घर गृहस्थ में रहने वाली थी। दादा लेखराज उनके घर से आरंभ होता है और दादा लेखराज वो बाल्यकाल में ही उनके पिताजी की डेथ हो जाती है तो उनके जो चाचा हैं वो उनको संभालते हैं। उन्होंने पाया, लंबी हिस्ट्री है उसको मैं शॉर्ट कर रही हूं, उन्होंने पाया कि ये बच्चा बहुत कुशाग्र बुद्धि है। आगे चलकर चाचा अनाज के व्यापारी थे, आगे चलकर लखी बाबू उसने हीरे जवाहरातों का धंधा शुरू किया। बड़े होने पर श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, 12 गुरु किए हुए थे और गुरु के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा भावना होती थी। गुरु को अपने घर में रिसीव करते थे और बहुत उनकी खातिर जो सम्मान होता है वो उनको देते थे। इनको कहा गया था कि आपकी आयु केवल 60 वर्ष है और 60 वर्ष के बाद फिनिश्ड। तो इन्होंने सोचा शायद मैं शरीर छोड़ दूंगा, तो बहुत भक्ति आपके परिवार में 3 कन्याएं थीं और 2 बेटे थे, सबकी शादी करके फारिग हो गए थे। उन दिनों में जब ये हैदराबाद सिंध की बात है, जो वहां पर महिलाओं का स्टेटस था बहुत लो, आप जानते हो वेमेन को तो देते ही नहीं थे, बहुत लो, और उनको ऐसे नौकरानी समझ के। एक मुझे सिंध से उस समय के व्यक्ति कोई मिले, उन्होंने बताया कि उन दिनों महिलाओं की जो अच्छा दिन होता था उनका केवल एक होता था जिंदगी में, और वो होता था उनका शादी का दिन, जिस दिन उनको सजा धजा देते थे, उसके बाद फिर वैसे के वैसे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो कई सिंधीज हस्बैंड्स वे लोग स्पेन, इंग्लैंड, ऐसी हांगकांग, वहां पर बिजनेस के लिए जाते थे। 5 साल में आना होता था तो महिलाएं पीछे बिचारी ऐसे ही रहती थी। तो जब ये शुरू हुआ तो शुरुआत हुई एक दिन, बाबा, मैं बाबा बोलूंगी इनको, बाबा माना पिता, इनके घर में गुरु आए हुए थे और गुरु लेक्चर दे रहे थे। जब गुरु लेक्चर दे रहे थे तो बाबा के मन में पता नहीं क्या आता है, वो अनइजी सा फील करते हैं और बाबा उठ करके अपने कमरे की ओर जाते हैं। तो उनकी जो पुत्र वधू थी उनका नाम था ब्रज इंद्रा, वो बाद में महाराष्ट्र की हमारी चार्ज बनी, उनकी भी लंबी कहानी है। उस समय उनका नाम राधिका था और बहुत ब्यूटीफुल, बहुत रिच फैमिली की थी। बाबा ने कई वायदे किए थे उसके, उनके माता पिता से, आपकी बेटी को मैं कैसे रखूंगा, उस सब चीजों को मैं छोड़ रही हूं। तो बाबा ने, जब ये ऐसा चल रहा था तो बाबा लेक्चर दे रहे थे, तो बाबा उठकर अपने कमरे में जाते हैं तो उनकी पुत्र वधु उनको फॉलो करती है कि बाबा तो ऐसा कभी नहीं करते, क्योंकि कोई लेक्चर दे रहा हो और उठ करके चले जाए तो उसको अपमानित मानते हैं ना, अपमान कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं। तो ऐसे बाबा फॉलो, उनको फॉलो करती हैं दादी ब्रजेंद्रा। तो जैसे कमरे की दलीज होती है ना, दलीज आप समझते हैं, एंट्री पॉइंट, वहां पर कहती मैं जैसे ही कदम रखती हूं तो मुझे लगता है सारा कमरा लाल लाल, और बाबा पद्मासन में बैठे हैं और उनके नेत्रों से जैसे कि अश्रुधारा बह रही है, फेस लाल लाल, और ये आवाज सुनती है, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ये आवाज इनको आती है। थोड़ी देर खड़ी रहती है तो बाबा अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं, जब बाबा आंख खोलते हैं तो उस लगता है जैसे बल्ब जग रहे हैं। और बाबा कहते, कौन था ये, कौन था? कोई लाइट थी, कोई माइट थी, ऐसा बाबा जैसे फिर से उस चीज को देखें, दिखाई दे, उस स्वरूप से बोल रहे थे। उसके बाद बाबा गुरु से पूछते हैं, बाबा ने समझा ये गुरु कृपा से साक्षात्कार हुआ है, तो गुरु से पूछते हैं, तो जैसे आपसे मैं कोई बात कहूँ और आपको पता ना हो तो आपके चेहरे से पता लग जाएगा ना, ऐसे ही बाप की उन गुरु के फेस से पता लगा कि ये गुरु की ब्लेसिंग से नहीं हुआ था। खत्म हो गई बात। बाबा वैसे गीता पढ़ते थे, गीता पढ़े बिना पानी भी स्वीकार नहीं करते थे, और उनकी जो वाइफ थी उनका नाम था जसोदा माता। बाबा का चरित्र इतना उज्जवल था, इतना मान सम्मान समाज में था, तो जैसे पुराने जमाने में कहते थे ना स्त्री को कि पति तुम्हारा ईश्वर है, आजकल तो कोई नहीं मानेगा, उन दिनों में कहते थे पति तुम्हारा ईश्वर है, तो वो बाकायदे उनकी पूजा करती थी। इतनी भक्ति, इतनी अश्रद्धा थी उनको अपने पति में। खैर, थोड़े दिन में फिर बाबा को दूसरा साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार होता है विष्णु का, और आवाज आती है, आम विष्णु चतुर्भुज तत्त्वम, मैं विष्णु चतुर्भुज हूं, तुम भी ये हो। तो उनको आश्चर्य लगता है, मैं गृहस्थी, मैं विष्णु चतुर्भुज कैसे हो सकता हूं? तो दिमाग चलना शुरू होता है। फिर थोड़े दिनों में साक्षात्कार होता है, थोड़े दिनों के बाद महाविनाश, सारी कलयुगी पुरानी सृष्टि, एटॉमिक वॉर, सिविल वॉर, नेचुरल कैलामिटीज से पूरा विनाश। ये बात 1936 की है, 36-37 की, और आप जानते हैं हिरोशिमा में फर्स्ट एटम बॉम्ब 1939 और 42 की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डाला, उससे पहले साक्षात्कार हो। तो बाबा बहुत डर जाता है, ये क्या है? फिर चौथा साक्षात्कार होता है, और वो साक्षात्कार होता है, आकाश से सितारे आते हैं और जो धरती पर आते हैं वो आते सार ही राजकुमार राजकुमारियां बन जाते हैं, देवी देवता है, और फिर से आवाज आती है, ऐसी दुनिया बनाने के निमित्त तुम हो। तो बाबा को परेशानी होती है, ये मैं पहले विष्णु चतुर्भुज अभी और बीच में वो साक्षात्कार हुआ विनाश का, तो ये मैं कैसे बना सकता हूं? जैसे मन उपराम होता है ना, वैराग वृत्ति आती है, ऐसे वैराग्य वृत्ति आनी शुरू हुई। बाबा की बॉम्बे और कलकत्ता में दुकानें थीं, और आज भी कलकत्ता में बीसियों दुकानें लखी बाबू के नाम से हैं। वो दुकानें कोई बाबा की नहीं है, परंतु जैसे कोई नाम अच्छा होता है तो यूज करते हैं ना, ऐसे बाबा के नाम से लखी बाबू की सोने चांदी की दुकान, लखी बाबू की हीरे रतन की दुकान, ऐसे करके वहां दुकानें हैं। बाबा का जो बिजनेस कलकत्ते में था, वो पार्टनर था उनके साथ, तो बाबा पार्टनर को बोलते हैं, कि भाई आपको जो करना है फैसला कर लो, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, तुमने जो करना है करो और मैं तो अब चला। और बाबा कलकत्ते से बनारस आते हैं। बनारस में वहां पर विश्वनाथ का मंदिर है ना, वहां पर तपस्या करते हैं। फिर बाबा का एक फ्रेंड रहता था बनारस में, उसकी बहुत बड़ी कोठी थी, वो मैंने देखी है, बहुत बड़ी कोठी। उस कोठी में बहुत बड़ा लॉन था। पुराने जमाने में होते थे ना, बिल्डिंग एक साइड पे होती, सामने लॉन्स होते थे। बहुत बड़ा लॉन था और लॉन में चबूतरे बने हुए थे। तो कहते हैं उनके फ्रेंड के बच्चे होते थे तब वहां, तो बताते थे कि बाबा घंटों तपस्या में बैठ रहते थे, घंटों। अब तो वो कोठी को उन्होंने, लॉन को आधा कर दिया, बेच दिया। अभी दोबारा भी मैं देखने गई लेकिन खत्म कर दिया। परंतु वहां बैठ के बाबा मनन चिंतन करते थे। और जब कलकत्ता से बनारस आ रहे थे तो अपने पार्टनर को तार किया, चलेगा। अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। अलफ को आई तार, अल्लाह की हुआ रेल का राय। अलफ बाबा ने खुद के लिए कहा और बे अपने पार्टनर को बोला। इस प्रकार से करते करते फिर बाबा सिंध हैदराबाद में आते हैं और अपने घर में जो रोज गीता पढ़ते थे, अब बाबा जब गीता पढ़ते थे तो नए नए उनके मीनिंग इमर्ज होते थे, वो बाबा शेयर करते थे फैमिली में। अब आपको अगर कोई बात अच्छी लगेगी तो आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे दूसरे तीसरे, ऐसे करते करते। और मैंने महिलाएं बताई, महिलाएं फ्री होती थी, सत्संग प्रेमी होती हैं, स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड होता है, तो महिलाएं जो थी ज्यादा वहां आनी शुरू हो गई। कुछ परिवार भी आए लेकिन महिलाएं ज्यादा थी। और एक नई बात, अब जब बाबा पढ़ते थे नए नए, ये होते थे कौन सी शक्ति कार्य कर रही है, ये बाबा खुद भी समझ नहीं पा रहे थे। बाबा जिसको देखे उसको साक्षात्कार हो जाए, किसी को कृष्ण का, किसी को ज्योति का, किसी को वैकुंठ का, किसको कुछ। तो लोगों ने समझा कि ये बंगाल से जादू सीख के आया है, जो जिसको देखता उसको वही गुम हो जाता है क्या है। अब वास्तव में ये बाबा को कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि साक्षात्कार होते तो उनको भी तो और होते रहते हैं ना, उनके घर परिवार वालों को भी होते हैं ना, नहीं थे ना, होते थे, सबको भी नहीं होते थे, कोई कोई को होता था, सबको। अगर जादू हो तो सभी को हो जाए, सबको नहीं होता था। तो इस प्रकार एक ये खबर फैलनी शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे सत्संग बढ़ता गया और वहां पे ओम ओम करके ध्वनि लगाते थे, ओम ओम, तो इसका नाम पड़ गया ओम मंडली, जो ओरिजिनल नाम था ओम मंडली। खैर वहां पर बाबा ने फिर धीरे धीरे तपस्या, त्याग और जो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ती थी उसकी इंटरप्रिटेशन, ये सब कुछ चलता है। अब धीरे 14 वर्ष तक बाबा ने क्या किया, बीच में अपना सब कुछ चल अचल संपत्ति ट्रस्ट को समर्पित कर दी, सब कुछ वो हो गया। फिर उसके बाद बाबा ने बाबा को देख करके कुछ और लोगों ने भी समर्पित की। फिर बड़े सारे 3-4 घर लिए, वहां पर जो लोग आते थे उन्होंने रहना शुरू किया और सत्संग इत्यादि ये चलता था। अब 14 साल तक तपस्या, और उसमें बाबा ये कहते थे आप आत्मा हैं और आत्मिक दृष्टि से ही सबको देखना है, रूहानियत। और उसके साथ साथ बाबा ने सिखाया कि जीवन में हमारा शत्रु कोई नहीं, हमारे शत्रु हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तीसरी बात सिखाई, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। अगर मैं मेरे में कुछ ऐसी बातें हैं तो मुझे आपको कहने का कोई अधिकार नहीं है। चौथा, मांगने से मरना भला, कभी भी आपको मांगना नहीं है। पांचवा, जिन देवी देवताओं की आप आराधना करते हो आपको उन जैसा बनने की कोशिश करनी है। तो सारी जो बेसिक बातें थी शिक्षा की वो बाबा उनको देते रहे। अब वहां पर ये फैल गया जो मैंने बताया ना, बंगाल से जादू सीख गया है, वो काफी हलचल मची, ऑपोजिशन पार्टी क्रिएट हो गई। सिंधीज जो थे उन्होंने कहा ये हमारे घर के घर बार को ये नष्ट कर रहा है, और उन्होंने ऑपोजिशन सिंधी पंचायत ने क्रिएट करके कहा कि इसके ऊपर केस होना चाहिए। लेकिन कोई तो कारण होना चाहिए ना केस का, इतना अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति, कोई तो कारण होना चाहिए, तो केस वगैरह तो नहीं, परंतु ये जरूर उन्होंने सारे उसमें कहा कि इस संस्था को हमको उखाड़ फेंकना है, इसको हमको खत्म करना है। अब जादू जो है वो किस में है, इनके आप लोगों ने सुना है ब्रह्मा कुमारियां जादू की, किसी ने सुना है? अच्छा, दो चार हैं जिन्होंने सुना है। अब किसी के लाइफ में अगर ज्ञान के आधार से परिवर्तन आता है, जो पहले कोई नहीं चेंज कर पाता और ज्ञान से समझ करके वो चेंज कर देता है, तो लोग कहेंगे ना, देखा 30 साल इसकी माँ इसको समझाती रही तब तो ये बदला नहीं, एक ही दिन वहां गया और बदल गया, तो कहेंगे जादू हो गया। तो ऐसे ही जादू जो इस प्रकार ज्ञान का जादू जरूर है। आपको एक हंसी की बात सुनाती हो, जादू की बात तो इतनी फैली, हम भी छोटे बच्चे थे तो हमने भी सुना था, क्योंकि मैं तो छोटी सी आयु से जुड़ी हुई हूँ, 8.5 वर्ष की आयु से। सो आई हैव सीन द इंस्टीट्यूशन ग्रोइंग, वी हैव ग्रोन विद द इंस्टीट्यूशन। तो हमारी माँ कहा करती थी जादू है, आर्य समाजी थी वो, और पिताजी को लगन लग गई तो पिताजी ने जाना शुरू कर दिया, इतनी ठंड में मोच पाँव में तो भी जाते थे, तो वो समझती थी कि इनको जादू लग गया। लेकिन वो जादू वाली बात नहीं थी, जादू की करना हो तो हम समाज में बैठ नहीं सकते, ओपनली नहीं बैठ सकते, जादू करना हो तो बड़े बड़े लोगों पे जादू करें, साधारण व्यक्तियों पर क्या करना, तो ये बात नहीं है, लेकिन ज्ञान का जादू है। फिर कुछ लोग कहते हैं इनकी आंखों में नहीं देख रहा, इनकी आंखों में जादू होता है, इनका जो सुरमा होता है ना ये माउंट आबू से बन करके आता है, तो इनका सुरमा कभी नहीं, विचित्र बातें। तीसरा कोई कहता है इनके यहाँ वीरवार के दिन भोग लगता है और भोग में हलवा बनता है, वो हलवा कभी नहीं खाना, वो जादू हलवे में ही होता है। अब आपको हंसी की बात सुनाती हूँ। एक सज्जन थे, वे भाषण कर रहे थे, ये सच्ची बात है, वे भाषण कर रहे थे और हमारे तिकोनिया पार्क, कमला नगर होता था ना, तो वहां पे तिकोनिया पार्क था और वहां सामने भाई भाषण कर रहा था, लोग सुन रहे थे, लाउड स्पीकर जोर से उसने लगाया था ताकि बहनों तक आवाज जाए, तो बहनें भी सुन रही थी। तो वो क्या कहते हैं, उनका भाषण बोलूंगी मैं, कहते हैं देखो कभी भी ब्रह्मा कुमारियों के पास नहीं जाना, जो जाएगा वो उनका ही हो जाएगा, इनके यहां वीरवार के दिन भोग लगता है, उस भोग में हलवा बनता है और उस हलवे में ही जादू होता है, वो कभी नहीं खाना। एक माता थी, उसने सुना हुआ था कि हलवे में जादू होता है, वो इनके सेवा केंद्र पर वीरवार के दिन गई और वहां भोग ला, भोग में हलवा था, क्योंकि उसने सुना हुआ था तो उसने हलवा खाया नहीं। वो हलवा ले आई और अपने घर में जो भैंस खूंटे से बंधी थी उसको हलवा खिला दिया। भैंस को इतना जादू चढ़ा, इतना जादू चढ़ा जो खूंटा तोड़ के इनके कमला नगर सेंटर पर पहुंच गए। और जो कमला में, अगर आपने कभी देखा हो कमला नगर का सेंटर हमारा 151 ही कमला नगर तीसरी मंजिल पर था, पुराने जमाने का मकान था और उसकी जो सीढ़ियां थी ना वो राउंड राउंड करके नहीं हुआ करती थी, नहीं ऐसे होती थी गोल गोल घूम के जाती थी, ऐसी सीढ़ियां थी, इतनी सी थी, मैंने तो देखा हुआ है वो सेंटर, इतनी इतनी चौड़ी सीढ़ियां। अब सोचो भैंस चढ़ गई खूंटा तोड़ के, इतनी सीढ़ियां चढ़ के ज्ञान सुनने के लिए वहां पर पहुंच गए। सोचो लोगों की बात, तो कोई वास्तव में वो जादू नहीं है, ना ही हम लोग कुछ ऐसी चीज, ज्ञान का जादू अवश्य है। अब आप लोग सवेरे से आए हो, आप लोगों को जादू लगा कोई को? अभी तक नहीं लगा नहीं लगा ये चीजें अपडेटेड और इतनी पुराने जमाने की बातें हैं जो आज के दिन में तो इनकी चर्चा करना भी व्यर्थ लगता है। खैर ये हुआ, फिर क्या हुआ उसके बाद दूसरी गलत, हाँ तो 14 वर्षों के बाद 1950 में हमारे जो सिंधीज थे उन्होंने सोचा इस संस्था को खत्म करना है, जैसे मैंने पहले बताया, तो उन्होंने निमंत्रण दिया। 47 में हमको इंडिपेंडेंस मिली और वो पोर्शन पाकिस्तान में चला गया। वे लोग बहुत अच्छी संभाल करते थे, अल्लाह के बच्चे इनको कहते थे, बहुत अच्छा संभालते थे, लेकिन सिंधी ने कहा देखो अपने देश में ही, हम लोग हिंदू हैं, अपने देश में ही रहना अच्छा है, तो आप लोग यहाँ आ जाओ, सब प्रबंध हम लोग करेंगे। तो बाबा ने कहा ठीक है। अब वहां से पूरा जहाज भर के 300 भाई बहनों का पूरा जहाज भर करके ओखा बंदरगाह पर आए, ओखा जो गुजरात में, मैंने वो भी जगह देखी। तो वहां पर जब आया तो वहां सामने रिसीव करने वाले कोई थे ही नहीं, नोबडी वाज देयर। अब ये जगह तो नहीं थी, जाएं तो जाएं कहां? बाबा को साक्षात्कार होता है कि बच्चे तुम्हारे लिए माउंट आबू अच्छा है। अब माउंट आबू कहाँ है यही पता? तो वहां से गाड़ी में बैठ करके आबू रोड आए। अब आबू रोड में 300 के रहने का मकान कहां से आएगा? मार्केट घूमा, लोगों से पूछा दीदी मनमोहिनी ने, और उन्होंने फिर बताया यहां तो नहीं, माउंट आबू में भरतपुर राजा की कोठी है, उस कोठी में अगर आप जाएंगे तो वहां इतनों के रहने की व्यवस्था हो सकती है। फिर दीदी और एक और जने माउंट आबू आए, वो देखा ठीक लगा, तो सब के सब वहां पर फिर शिफ्ट हुए माउंट आबू। तो इस प्रकार 550 हम लोग माउंट आबू में आए। वहां से फिर 52 में बाबा ने दादी मनोहर इंद्रा और दादी आतम इंद्रा इन दोनों को सेवा अर्थ भेजा। सेवा अर्थ भेजा कि अभी आप लोग तैयार हुए हो, अब जो ज्ञान आपने सुना है वो आपको औरों को भी सुनाना है। अब आप देखिए ये इनोसेंट ने, इतनी इनोसेंट थी कि उन्हें करेंसी नहीं देखी हुई थी, सिक्के क्या होते हैं, करेंसी क्या होती है, वो कुछ नहीं देखा। तो बाबा हमने तो देखा नहीं, लखनऊ जाना है, बाबा ने किस उनको कहा दिल्ली जाना है, बाबा दिल्ली तो देखी ही नहीं है हमने। तो बाबा कहते थे अरे अंधों ने मुल्तान ढूंढा और तुम लोग तीन तीन नेत्र वाले दिल्ली नहीं ढूंढ सकते हो। तो बाबा उनको एनकरेज करके भेजता था। तो ये दोनों बहनें आई और आकर के यमुना का घाट है ना, वहां पर बैठ के दोनों ने, दादियों ने प्रवचन शुरू किए। प्रवचन तो अच्छे ही होते थे, सबको अच्छे लगते थे धीरे धीरे। लेकिन उनमें एक माता जी आती थी जो हमारे दिल्ली के नगर सेठ होते थे, लाला जगन्नाथ, उनकी माता जी बड़ी रॉयल। उन्होंने देखा ये दो कुमारियां लगती भी अच्छे परिवार की हैं, रॉयल हैं, बोलती बहुत अच्छा है, देवियां हैं, ये बिचारी यमुना के घाट पर, और वहां टूटी फूटी सी कुटिया सी बनी होती थी और तो किसी को जानते नहीं थे। इस प्रकार उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने इनका प्रबंध दोनों दादियों का गौरी शंकर के मंदिर में किया। गौरी शंकर मंदिर जानते हैं ना, दिल्ली चांदनी चौक में जो मंदिर है, गौरी शंकर जी के मंदिर में किया, वहां पर धर्मशाला में रहे। धर्मशाला में दादियां ने अभी भाषण शुरू की थी। इतना रश, इतना रश, इतना रश होता गया, जो बेचारा मंदिर वाला हैरान हो गया कि मेरी अपनी पब्लिक इतनी नहीं आती है जितने इनके आते हैं। तो उसने कहा भाई अभी आप लोग कोई दूसरी जगह ढूंढो, क्योंकि यहाँ पर तो पूरा नहीं पढ़ पाता है। फिर 151 ई कमला नगर ढूंढा गया और वहां पे रहना शुरू किया। परंतु परीक्षा तो भगवान लेता है, खूब अच्छी परीक्षा ली, खूब अच्छी परीक्षा ली। ईश्वर का कार्य है ये, ब्रह्मा का भी कार्य नहीं है, इसका भी कार्य नहीं है, परंतु ईश्वरी कार्य, वो स्टोरी दूसरी है, फिर अगर मैं वो सुनाऊंगी तो उसमें ज्यादा समय लगेगा। ईश्वरी कार्य है इतना ही अभी आप समझ लें। हम इनको गुरु नहीं मानते हैं, ये हमारे गुरु नहीं है, हमारे यहां कोई भी ह्यूमन गुरु की बात ही नहीं है। परिवार जैसे हैं भाई और बहनें, परिवार में भी कोई भी बहन होती है, छोटी बहन होती है, छोटा भाई होता है, बड़ा भाई होता है, तो उस तरीके से करते हैं ना, मान सम्मान वैसे देते हैं, वही सिस्टम। बाकी हमारे यहां कोई ह्यूमन गुरु नहीं है। और दूसरी बात, ये जो ज्ञान हम आपको सुनाते हैं ये न इनका है न हमारा है, परंतु परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। इट्स अ रिवील्ड नॉलेज जो कि इस रथ के द्वारा दी गई। तो इस प्रकार से हमने पाया कि घर गृहस्थ में रहने वाले उनका आना शुरू हुआ, आते थे। अब जब परीक्षा की बात मैं आपको सुना रही थी, जब माउंट आबू आए तो भरतपुर राजा की जो कोठी थी उसके सामने शमशान था, तो वहां पर आवाजें सुनाई देती थी, साथ साथ वहां पर सांप आप भी निकलते थे। तो जैसे धीरे धीरे डर से कुछ लोग, परीक्षा तो परीक्षा है, कुछ लोगों ने जाना शुरू किया, कुछ लोगों ने सोचा कि पता नहीं क्या होगा, तो उनके रिलेटिव्स के चिट्ठियां आनी शुरू हुई, उनसे पूछा आप जाना, हम जाना चाहते हैं। ऐसे परीक्षा झाड़ जैसे हिलता है ना, ऐसे अच्छी तरह से हिला। उसके बाद और जबरदस्त परीक्षा आई। अब आप अगर खाते जाएं, खाते जाएं, खाते जाएं, कमाई ना करें तो कुआं भी एक दिन क्या होता है, सूख जाता है ना। अब कोई सोर्स ऑफ इनकम तो था नहीं, और उन्होंने जो भी धन संपत्ति सरेंडर की थी वो फिश होते गए। एक दिन ऐसा आया कैश बॉक्स में सिर्फ 8 आना था। बाबा से पूछा, बाबा आज क्या बनेगा। बाबा वॉकिंग पे ले आते थे तो माउंट पे तो बेरीज बहुत होती है ना, नाश्ता उससे कर लिया। दोपहर में अब क्या बनेगा, बाबा ने बेल कितने बजे लगेगा। अब आप इनका निश्चय देखिए, बाबा ने कहा बेल उतने बजे ही लगेगा जितने बजे सदा लगता है, और हमारे यहाँ बेल 12 बजे लगता है भोजन का बेल, यहाँ पर तो 1 बजे लेकिन वहां पर माउंट में 12 बजे। तो बाबा आज क्या बनना है, कुछ तो है नहीं। तो बाबा ने कहा मम्मा से जाके पूछो, मम्मा वो स्पिरिचुअल हेड जो कि माताओं बहनों की संभाल के लिए निमित थी, मातेश्वरी सरस्वती जिन्हें हम कहते हैं। तो कहा मम्मा से जाके पूछो। मम्मा से पूछा तो मम्मा कहती है बाबा से जाके पूछो। तो जो किचन की हेड थी वो हैरान हो गई बाबा के पास, बाबा मम्मा कहती है बाबा से पूछो, बाबा कहता मम्मा से पूछो, मैं क्या करूं। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्ची, तुम मेरे पास 10 बजे आ रहा। 9:30 बजे डाक आया करती थी, और कभी कभी आपको याद होगा शुरू में इनलैंड लेटर्स होते थे ना, वो एनवेलोप्स होते थे, उसमें कई लोग पैसे डाल के भेज देते थे, तो ऐसे ही उसमें डल करके आई 9:30 बजे की डाक में, पहली डाक में। किसी ने भेजे आए, बाबा ने वो दिया, जाओ सामान खरीदो और बेल उतने बजे ही लगेगा जितने बजे लगता है। बड़ी परीक्षा थी, परंतु इस परीक्षा ने अच्छे अच्छे को, जो बहुत अच्छे चल रहे थे ज्ञान योग में, अच्छे अच्छे को हिला दिया। परीक्षा लेना भगवान का कार्य है, कोई भी चीज किसी को प्लेट में रख करके तो नहीं मिलती है, आपको उसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ता है। ऐसे ही ये परीक्षा थी, यहां तक पूछा जाना शुरू हुआ आप कितनी रोटी खाएंगे, एक रोटी एक्स्ट्रा बनती थी। आज हमसे कोई पूछे तो हम क्या कहेंगे, हमें खाना ही नहीं है, यही जवाब होगा ना हमारा, हमें नहीं खाना। उन दिनों पूछते 15 दिन आधी ज्वार की रोटी और लस्सी से चले 15 दिन के बाद। ये हमारे ये यज्ञ की अक्यूट परीक्षा का समय था, उसके बाद फिर धीरे धीरे ठीक होता है। कई टूटे कई फूटे कई चले गए, जो आज वापस लौट के आ रहे हैं, अरे हमने तो समझा ही नहीं था ये इतना विस्तार को, इतना विशाल बन जाएगी ये संसार, अब लौट रहे हैं, हमने तो समझा ही नहीं था ऐसे सेंटर्स बनेंगे। परीक्षा में उत्तीर्ण भी तो होना होगा, है ना। तो इस प्रकार से ये चल रहा। फिर उसके बाद सेवाएं शुरू हुई, जैसे दिल्ली में कमला नगर खुला ना, कमला नगर के पश्चात फिर फैमिलीज जब आनी शुरू हुई तो अलग अलग स्थानों पे, करोल बाग नंबर 2 पे खुला, और करोल बाग का जो सेवा केंद्र है वो हमारे जो बड़े भाई आजकल यहां रहते हैं ब्रजमोहन भाई, उनके घर में खुला, और उसके बाद जो है फिर आगे और खुलते गए खुलते गए। तो इस प्रकार से ये था। फिर तो उसके बाद सेवा केंद्र कभी लखनऊ में, कानपुर में, अमृतसर में खुलने शुरू। आज हमारे लगभग 4,000 केंद्र हैं और रिट्रीट सेंटर्स इस प्रकार के 4-5 भारत में हैं, विदेश में भी अपने केंद्र हैं, और विदेश की सेवा 1974 में शुरू हुई और बहुत फास्ट सारे विश्व में फैली, जो कि 137 कंट्रीज में है, और उसके अतिरिक्त यूनाइटेड नेशंस की इकोसॉक यूनिसेफ में सदस्यता है, कंसल्टेटिव स्टेटस है, भिन्न भिन्न जो विंग्स हैं उनकी सेवाओं के निमित्त लगभग 21 विंग्स हैं जिसके द्वारा सेवाएं होती हैं। परंतु अब मैं आपको कुछ एक वो बातें बताऊंगी जो आम तौर पर लोगों के पास गलत फहमी होती है। कई प्रकार की ऐसी बातें, फॉर इंस्टेंस, इनके पास पैसा कहां से आता है। दूसरी बात, इनके पास इतनी यंग बहनें कहां से आती हैं। ये दो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं, जादू वाली बात मैंने बता दी। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, 99.9% जो आने वाले भाई बहने हैं वो वर्किंग है, 99.9%, उससे भी ज्यादा ही होंगे। केवल 0.1% हमारे जैसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को टोटली डेडिकेट किया है। तो जो 99.9% भाई बहने हैं उनके जीवन में ईश्वरीय शिक्षाओं से जो परिवर्तन आता है, मानिए किसी की लाइफ से स्मोकिंग खत्म होती है, ड्रिंकिंग खत्म होती है, फैशन परस्ती खत्म होती है, फिजूल खर्ची खत्म होती है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है, तो नेचुरल है वो सोचता है जहां से मुझे लाभ हुआ वहां पर मैं सहयोग दूं। ये वॉलंटरी है, हमारे यहां कोई मेंबरशिप सिस्टम नहीं है कि आपको इतना करना है, नेवर, कभी नहीं। लेकिन कोई हम कहें भाई आपको इतना करना है, इतना करना है, इतना नहीं, भंडारी रखी है, जिसको जितना डालना है डालो। कोशिश करना हम लोग हाथ में भी नहीं लेते हैं, क्योंकि हम अपने मन को मैला क्यों करें कि इसने इतना दिया तो इसने इतना दिया। हमें क्या मतलब, आप हमें तो दे नहीं रहे हैं, तो कॉज उस पे जा रहे हैं, सेवा पर जा रहे हैं। और भगवान की तो कमाल है, वो एक का पदम गुणा बना देगा। आप मुझे एक रुपया देंगे, मुझे उसको रिटर्न करना पड़ेगा, मैं कहां से लाऊंगी, आई हैव नो मनी। जो ईश्वर अर्थ करता है, ईश्वर उसका रिटर्न उसको देता है, हम तो नहीं दे सकते। भंडारी कई लोग हमसे कहते हैं जो बेनिफिशियरीज हैं ये उनके लिए, आपने देखा होगा भंडारी पे लिखा होता है ईश्वरीय विद्यार्थियों के लिए, जितनी हमारी भंडारी है ना उस पर ये लिखा होगा ईश्वरीय विद्यार्थियों के लिए। अब कई भाई बहने ऐसे होते हैं कहते नहीं, अपने भारत देश में तो बहुत होता है कि नहीं भाई हम यहां आए हैं, हम यहां रहते हैं, आज सवेरे से मेरे से कई लोग पूछ चुके हैं, रहते हैं हम लोग यहां की सेवाएं ले रहे हैं, हम करना चाहते हैं, तो भंडारी रखी है, जिसको जो डालना वो डालो, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात, जितने सेवा केंद्र हैं वो सब निमंत्रण पर खुले हैं। कोई चाहे हमारे क्षेत्र में सेवाएं हो तो वो इनविटेशन बाकायदे लिख करके देते हैं, जो माउंट आबू जाता है माउंट आबू से अप्रूवल होती है, और फिर जो है वो इस प्रकार से माउंट आबू से बहने डेप्यूट की जाती हैं जो सेंटर पर रहती है। फिर जो लोग इनवाइट करते हैं वो जिम्मेवारी लेते हैं कि हम इसका ध्यान रखेंगे, हम लोग सेवा केंद्र का ध्यान रखेंगे, और जो बहनों आदि का खर्चा है वो हम लोग वहन करेंगे, इस प्रकार से हमारी सेवा केंद्र खुलते हैं। अब आप कहेंगे आपके पास इतना बड़ा ये कैंपस है, कोई तो होगा, मैं आपको स्पष्ट बता देती हूँ, अपने यहाँ आने वाले कोई टाटा बिरला नहीं है, अपने यहाँ आने वाले कॉमन मिडिल क्लास के लोग हैं। अगर आज हम फाइनेंशियल सपोर्ट ऐसे लोगों से ले लें, हमें उनकी उंगलियों पे नाचना पड़ेगा, जैसा वो चाहेंगे वैसा हमें करना पड़ेगा, वो हम नहीं कर सकते हैं। हम अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इसलिए बाबा ने शुरू से ये विधि बनाई है, जिसको जो करना है बूंद बूंद से तालाब बनता है, बूंद बूंद से तालाब होता है और उसमें शक्ति भी होती है। जहां हमारा मन होगा वहां हमारा तन होगा, जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। नेचुरल, आप जहां लगाते हैं आपका मन भी जाता है। फिर केवल आप धन से सपोर्ट करने को राजी हो और आप पढ़ाई ना पढ़ें, ये भी होने वाला नहीं है। आप कहें जी हम धन से सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन हमें रोज क्लास में आने के लिए मत कहिए, वो हमें स्वीकार नहीं है। आप हमसे सेवा ले नहीं और हम आपसे ले, हम अपने ऊपर बोझ थोड़ी चढ़ाएंगे, वो काम हम नहीं करते हैं, ये सिस्टम। अब ऐसे ये कैंपस है, कोई भी एक जना तो नहीं बना सकता। इसके लिए फिर माउंट आबू से जो दादी जी हैं वो सब सेंटर्स पर एक बुलेटिन भेज दे रही हैं, क्या कि इतने सारे ये कैंपस बनना है और आने वाले जो परिवार हैं आज संलग्न हैं वो 9 लाख से अधिक परिवार परिवार 9 लाख से, जो हमारा कोर है, जो रेगुलर रूप से क्लासेस कर रहे हैं। अब मान लीजिए ये कैंपस बनना है, दादी ने ऐलान किया, अब 9 लाख में से मान लीजिए 5 लाख नहीं करते, दादी कहते हैं 1 रुपया रोज भंडारी में डालो, 1 रुपया ओनली 1 रुपी रोज भंडारी में डालो, तो मानो 4 लाख करते हैं, तो 4 लाख एक दिन में कितना हो गया, 4 लाख इकट्ठा हो गया, 1 रुपी इकोनॉमी। ये हमारा सिस्टम है। इस रीति से जो बड़े कैंपस हैं वो हमारे बने हैं। अब कोई इंजीनियर होता है, कोई आर्किटेक्ट होता है, आने वाले बेनिफिशियरीज भी तो डिफरेंट प्रोफेशंस के हैं। कोई आर्किटेक्ट है तो आर्किटेक्ट कहेगा कि मैं इस दुनिया से कमाता हूं, इस ईश्वरीय स्थान से मैं क्यों कमाऊं, ये मैं सेवाओं में लगाता हूं। तो आर्किटेक्ट अपनी सेवाएं फ्री देते हैं, इंजीनियर्स अपनी सेवाएं फ्री कई दे देते हैं, कई पेमेंट भी लेते हैं, हर एक की अपनी अपनी होती है, जो कर सकते हैं वो करते हैं, बंधाइश किसी के ऊपर नहीं है। ऐसे ही किसी का सीमेंट का बिजनेस है वो कर देते हैं, किसी का कुछ मंदिर ऐसे ही तो बनते हैं ना। अगर आपका 10 रुपया एक चीज पे लगता है ना तो ईश्वरीय यज्ञ का 3 लगेगा, इतना अंतर पड़ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से बड़े कैंपस हमारे बने हैं। अब कुछ लोग कहते हैं इनके पास पैसा विदेश से आता है। मेरा सवाल ये है, विदेश से क्यों, भारत हमारा कम है क्या जो हमको विदेश से चाहिए, भारत कम है, विदेश से क्यों लेने लगे। विदेश के साथ हमारी केवल स्पिरिचुअल लेसन्स जो माउंट आबू में छपते हैं डेली, वे लेसन्स वहां जाते हैं, हमारा संबंध केवल मात्र उतना ही। जब वे भारत में आते हैं, संस्था रजिस्टर्ड है, इनकम टैक्स हम लोग एवरी ईयर आईटी रिटर्न फाइल करते हैं, हमारे अकाउंट्स ऑडिट होते हैं, और जब विदेशी आते हैं तो जो इंडियन करेंसी में जो उनका सिस्टम है, जैसे भारत वाले डालते हैं ऐसे वो भी डालते हैं, ठीक है? क्लियर हुआ? हो गया क्लियर? अब चलो दूसरी बात, इनके पास इतनी यंग बहनें और सब पढ़ी लिखी, ये कहां से आ रही है? अब आपको मैं स्पष्ट बता दूं, मैं ऐसी जगह पे बैठी हूं जहां मेरे पास कई फोन्स आते हैं, कई बहनें आती हैं, हमको यहीं रख लो, हमारा नियम है, हम किसी को यहां नहीं रख सकते। आप कहें ना हम यहां रह जाएं, हम आपको कहेंगे कि आपको अपने घर जाना पड़ेगा, कोई नहीं रह सकता, नियम नहीं है, फैमिली यूनिट है। अगर आप किसी भी सेवा केंद्र पर जाएंगे, अकेले जाएंगे, तो आपसे कहा जाएगा भाई आपका साथी कहां है, साथी को क्यों लाए? बहन जाएगी तो उसको कहेंगे भाई आप अपने साथी पति को लेके आओ, पति जाएगा तो फिर पत्नी को लेके आइए। क्योंकि जब तक दोनों का माइंडसेट चेंज नहीं होगा, तब तक आप इस लाइफ में खुशी का अनुभव नहीं कर सकते हैं। दोनों की लड़ाई होती रहो, एक का कहीं और जाए, दूसरे का कहीं और जाए, तो लड़ाई होगी ना। दोनों को इकट्ठे चलना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो फैमिली आती हैं और फैमिलीज में बच्चे भी आते हैं। आज यहां पर इस कैंपस में हमारे जो छोटे छोटे बच्चे आते थे अपने पेरेंट्स के साथ में, आज वो सेवाओं में लगे हुए हैं। 15 साल पहले इतने इतने थे, आते थे पेरेंट्स के साथ, आज वो सेवाओं में लगे हुए हैं, सारे कार्य कर रहे हैं। पेरेंट्स के साथ बच्चे आते हैं, अगर उस कन्या की हम देखते हैं कि इस ओर लगन है, तब हम उनके पेरेंट्स को कहते हैं कि आप इसको इनकरेज करें। हर कोई तो स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड का नहीं होता है, और अगर नहीं है तो हम पेरेंट्स को एडवाइस कर देते हैं कि आप बेशक इसको, जैसे आम तौर पर दुनिया में माँ बाप बच्चों के साथ उनको सेटल करते हैं, आप इनको सेटल कर दें। क्योंकि अगर उसका माइंड नहीं है तो यहां आकर के भी उसकी गाड़ी खटखट करेगी, संस्था के लिए परेशानी होगी। पहली बात, पढ़ाई को हम कभी रोकते नहीं हैं, खूब पढ़ो कन्याएं, जितना पढ़ें उतना अच्छा। पढ़ने के बाद अगर आपका मन है तो कन्या की अपनी छुट्टी चाहिए, दूसरा उसके पेरेंट्स की छुट्टी चाहिए, तीसरा उसके टीचर का भी सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद माउंट आबू में ट्रेनिंग होती है, वहां कन्या जाती है, ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद उनको डिफरेंट सेंटर्स पर भेजा जाता है, क्योंकि अपने सेंटर पर तो जैसे अपने घर का बच्चा तो ठीक ही होगा ना, उसकी असली परख होती है जब वो दूसरे सेवा केंद्र पर जाता है। संस्कार कैसे हो तो दूसरी जगह पता लगेंगे, फिर उनको डिफरेंट सेंटर्स पर भेजते हैं। 5 साल तक उसका ये प्रोबेशन पीरियड रहता है, उसके चेंज भी होता है, वो खुद को भी समझती है मुझे चलना है या नहीं चलना है, कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं। उसे अपने स्टूडेंट से सर्टिफिकेट लेना है, अपनी टीचर से लेना है, अपना लेना है, पेरेंट्स का लेना है, तब जा करके 5 साल के बाद वो एक रेगुलर टीचर के रूप से सेवा केंद्र पर रह सकते। 5 साल पीरियड तो काफी होता है, उसमें डिसीजन ले सकती है। और फिर मानो 20 साल के बाद मुझे लगता है नहीं मेरे लिए लाइफ बड़ी सख्त है, मैं नहीं चल सकती, कोई बंधन नहीं है, अगर कोई कन्या जाना चाहे जा सकती। क्यों? अगर उसका मन नहीं है और अनमने व्यक्ति को आप अपने पास रखेंगे तो काम नहीं चलेगा ना। इससे तो अपनी लाइफ जैसे आप चाहते हो वैसे जियो। ऐसे केस बहुत कम होते हैं, लेकिन मैं ये कहूं कि बिल्कुल नहीं होते, वो भी नहीं है, बहुत 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 कम, 0.1% भी नहीं है, क्योंकि सोच समझ के कदम लेते हैं। फिर हमारे यहां फैमिली के साथ हम कनेक्शन तोड़वाते नहीं हैं। आज मेरे पेरेंट्स ही आएंगे और मैं भी अपने पेरेंट्स के पास जा सकती हूं, कोई आने चाहे यहां पर कोई मना नहीं है। तो इस प्रकार से बहनें जो है वो यहां पर सेवाओं में रहती हैं। हम सड़क चलते हुए किसी को भी नहीं ले, बहुत रिग्रस ट्रेनिंग होती है। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात है। और कोई क्वेश्चन हो पूछ लीजिए, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। नजदीक आके बोलो, नहीं तो कोई जना बताए।
ओम शांति। आई वॉज आस्किंग हाउ आर यू मैनेज टू मेंटेन दिस वुमन सुप्रीमेसी इन दिस कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड।
सो मच
वुमन सुप्रीमेसी, नारी शक्ति जो यहाँ पे देखते हैं, लीडरशिप मिलती है नारियों को, उसके पीछे क्या चैलेंज रहे हैं और कैसे उनको ओवरकम किया गया?
मैं ये बात बताना भूल गई कि इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का जो नाम है वो पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। जब हमारी सेवाएं शुरू हुई ना तो ये नाम पड़ा, 1952 में जब शुरुआत होती है तो नाम पड़ा। अब आप कहेंगे कि बहनों के द्वारा क्यों? बहनों माताओं में हमारी हिस्ट्री है, आप देखेंगे बहनों माताओं का सम्मान अपने देश में रहा है। कहा था यत्र नारी पूजन्ते रमणते तत्र देवता। और अगर पूजा नहीं है, इसका रिवर्स है, तो वो भी आप समझ सकते हैं क्या है। अगर वहां देवता निवास करते हैं जहां पूजा होती है और जहां नारी का तिरस्कार होता है, तो कौन होते होंगे? तो माताओं के अंदर, मां के अंदर स्पेशली कुछ विशेष गुण होते हैं, पालना के संस्कार होते हैं। आज बच्चा कुछ गलती करके आता है, फादर उसको आंख भी दिखाएगा, थोड़ा सा मारेगा भी, मां क्या करती है? चुप करके बच्चे की गलती को समझ करके समा लेती है, अंदर ही अंदर कोशिश करती है बच्चे की ये बात ठीक हो जाए। ठीक है, मदर्स बैठी हैं यहां, ऐसे करते सहन शक्ति होती है, समाने की शक्ति होती है, आध्यात्म प्रेमी होती हैं, समय भी उनके पास अधिक होता है। इन कारणों से, और अगर आपको मैं शास्त्रों की ओर ले जाऊं तो आपने कहानी सुनी होगी सागर मंथन की, जिससे कलश निकला था अमृत का और वो लक्ष्मी जी को दिया गया था, आप अमृत पटो। वास्तव में कोई सागर से ऐसा कोई कलश वलश निकलता नहीं है, लेकिन ये है ईश्वर द्वारा प्रदत्त ज्ञान का कलश, ज्ञान अमृत का कलश, जो परमात्मा बहनों माताओं को सौंपते हैं, इससे आप बांटो। भारत में नदियां, उनको हम क्या कहते हैं, पतित पावनी। अब पानी की नदियों की बात नहीं है, पानी में स्नान करने से हम पतित से पावन नहीं बन जाएंगे, लेकिन हाँ ज्ञान अमृत है, जिसको समझने से, अंडरस्टैंड करने से, रियलाइज करने से हम अपनी बुरी आदतें छोड़ देते हैं, पतित से पावन बन जाते हैं। हमेशा कहते हैं मदर लैंड मदर टंग, फादर लैंड फादर टंग नहीं कहते। श्री लक्ष्मी श्री नारायण, श्री सीता श्री राम, यूं बोलते हैं ना। तो पहले माताओं बहनों का ही सम्मान, और विमेन लीडरशिप की बात कब कही थी 1937 में, ये तो आज दो चार वर्षों से ज्यादा चालू हो गया, ये तो 1937 में माताओं बहनों को दिया गया था। हमारा सारा एजुकेशन सिस्टम माताओं बहनों के द्वारा है, एडमिनिस्ट्रेशन माताओं बहनों के द्वारा। ठीक है, और कोई बात?
Om Shanti. I have a question, like the knowledge that this organization is imparting to all of us, is there any governing body who manages this, what knowledge should be imparted, or is the same knowledge that has been given by Brahma Baba from 1940s, 50s, is that same knowledge being imparted even today? Like there are so many spiritual organizations even in India. So do you people have any connection with each other, or your body is totally sole independent body and you people have your own setup to decide what knowledge will you impart? Because I guess there should be something which should change with time, and which things, because some things were not relevant in those days. So do you change your knowledge, or they change the wisdom that you impart with time?
We do have governing body for administration system. For the administration, we do have. Brahma Kumaris ki bhi hai, aur Rajyoga Foundation, jo iski sister concern hai, uski bhi hai, Brahma Kumari Education Society ki bhi hai. Lekin administration ke liye, jo knowledge hai, wo knowledge jo di gayi thi, wahi knowledge hum aapko aaj ki date mein bhi de rahe hain. परंतु जो आजकल का सिनारियो है, जो आजकल के चैलेंजेस हैं, जो आजकल की बातें हैं, उन सर्कमस्टेंसेस में भी वो कैसे सूट करे, जैसे आपको सोल कॉन्शियसनेस का सबक दिया गया, हाउ इज इट रेलेवेंट इन योर प्रैक्टिकल वर्क लाइफ, बहन ने बताया होगा, तो ये इसको हम कैसे प्रैक्टिकली ट्रांसलेट करें अपनी लाइफ पर, उसमें जरूर हर एक के अपने अपने एक्सपीरियंसेस और विजडम ऐड होती है, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो सेम, बेसिक नॉलेज से।
ओम शांति दीदी। दीदी हम लोग तो नॉलेज में चल ही रहे हैं, बट इफ यू वांट टू take this forward one step next, especially in the IT industry, there is a lot of stress, and I think it's all about how people think about and how they can change the attitude, right? If you want to have some of the events organized in our organizations, does Brahma Kumaris comes and then take some cafe sessions at the organization, if we try to arrange that, and if do so, what is the process to do so?
Arranging programs?
Yes,
that is possible. You consult Sister Rama, then she will guide you.
Okay? Thank you.
We can organize, our faculty goes to the organizations also, and organizations come here also.
Om Shanti. Hum sabhi didi ka bahut bahut thanks karenge.